इस वक्त पूरी दुनिया में ये बात हर मकतब फ़िक्र के अफराद को मालूम है कि आज़ादारी या सैयद शहदा दीन मुबीन इस्लाम में रग हयात की हैसियत रखती है। इस दीन मुबीन इस्लाम को करबला और करबला के तसलसल को आज़ादारी की शक्ल में करबला ने जिस तरह से ज़िंदा रखा, वो न किसी पर साबित करने की ज़रूरत है और न उसके लिए अदिल्ला की ज़रूरत है। लिहाजा करबला और फिर करबला के बाद उस करबला की तहरीक और नहजत का जो तसलसल आज़ादारी की शक्ल में आया है, उसकी अहमियत पर हम बहस नहीं कर रहे और ना वो काबिल बहस है। एक ऐसा साबित अम्र है, एक ऐसा माना हुआ अम्र है कि जिसमें किसी को कोई शक व शुभा नहीं है। जहाँ तक मरहला है इस आज़ादारी की शरई हैसियत का, तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि एक शुभे के तौर पर ये बात फैलाई गई और इसको ज़्यादा प्रमोट किया गया कि जी किसी भी शख्स के ऊपर रोना जो है वो बिदत है और हराम है। ऐसा नहीं है। हमारे पास शिया सुन्नी दोनों मनाबे के अंदर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हत्ता असहाब का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया साबित है सही और सनद हदीसों में। लिहाजा शरई तौर पर सबसे पहले तो अगर हम हदीस की रूह से जाएं तो हमें ये बात मिलती है कि ख़ुद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया किया, और ये एक आध मरतबा नहीं हुआ, मुतअद्दिद बार हुआ। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब आप उसको पेशन गोई कहें या आप उसको कोई और नाम दें, आइंदा की खबर दें, इल्म रसालत में आप कहें या जो भी उसको नाम दें, उसके तहत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर दी। शहादत के मजलूमाना पहलू को सामने रखते हुए ख़ुद भी गिरिया किया और अपने असहाब को भी रुलाया। लिहाजा ये बात मुत्तफ़क अलैह तौर पर साबित है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हत्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले गिरिया भी किया है और आपकी आज़ादारी भी की है। बस हमारे पास चूँकि मुत्तफ़क अलैह तौर पर यह चीज़ मौजूद है कि पैगंबर अकरम ने और उनके असहाब ने गिरिया किया, और फिर आइम्मा के हमारे पास अगर शिया आप उसमें बात करें तो हमारे पास आइम्मा की अहादीस का एक तसलसल इतनी शिद्दत के साथ मौजूद है कि हमारे पास आज़ादारी के न सिर्फ शरई होने बल्कि उसके इस मकाम में कि हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अपने मशहूर सहाबी इबन शबीब से फरमाते हैं, इबन शबीब इन बकैता अला अल हुसैन अलैहिस्सलाम हत्ता तुसीरा दुमुआ का अला खद्दई का गफर अल्लाहु लका कुल ज़म्बिन अज़नबतहु सगीरन काना ओ कबीरा कलीलन काना ओ कसीरा। इमाम फरमाते हैं ऐ इब्ने शबीब, अगर तुमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया किया यहाँ तक के तुम्हारे गालों पर, तुम्हारे रुखसार पर जो है वो आंसू बह गया, ये आंसू का बह जाना तुम्हारे रुखसार के ऊपर, तुम्हारे रुखसारों के ऊपर इमाम हुसैन के गम में आंसू का बह जाना, ये बाइस बनेगा कि परवरदिगार तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। लेकिन मैं हमेशा यहाँ पर ये जुमला साथ कहता हूँ और हमेशा इसको कहना चाहिए भी मेरे नज़दीक में कि हमेशा हमें इस बात पर को जहन में रखना चाहिए कि इमाम हुसैन के ऊपर गिरिए से मुराद क्या है, इमाम हुसैन पर गिरिए से मकसद क्या है, किस चीज़ को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गिरिया कहते हैं। इसलिए कि वो चीज़ के जो हमारे इस्लाम में और फिर इस्लाम की तमाम तर इनकलाबी तहरीकों का मरकज़ रही है वो करबला है, और उस करबला में अहम तरीन जो किरदार अदा किया वो आज़ादारी ने किया है, और इस आज़ादारी की रूह गिरिया बर इमाम हुसैन है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। यानी अगर मैं रिवायात में चला जाऊँ तो इतनी कसीर रिवायात हमारे पास मौजूद हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिए और उस गिरिए की फजीलत के हवाले से। लेकिन आया, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि गिरिया और इमाम हुसैन पर गिरिए से क्या मुराद है, तो वाज़े तौर पर इमाम हुसैन के ऊपर दो तरह का गिरिया तारीख में नज़र आता है। एक गिरिया वो है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकाम और मंजिलत को समझते हुए और इमाम की मजलूमियत की कैफियत को दर करते हुए आमाक़ जान, जिसे कहना चाहिए दिल की गहराइयों से, इस कैफियत के साथ आंखों से निकलता है कि ऐ काश فَيَا لَيْتَنِي كُنَّ مَعَكُمْ، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، اس کیفیت کو درک کرتے ہوئے آنکھوں سے نکلتا ہے، اور وہ گریہ جو انسان کو عمل کی طرف لے کر جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس تاریخ میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے الفاظ موجود ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس کو نیزے پر دیکھا، بیویوں کو سر برہنہ بازاروں میں دیکھا، اور ان کی اس حالت پر گریہ تو کیا، لیکن ان کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے اور ان کے دفاع کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا. ایسے افراد کو روتے ہوئے دیکھ کر حضرت زینب نے بددعا بھی دی ہے. پس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جب رونے کی بات کی جاتی ہے کہ امام حسین پر رویا جائے، امام حسین کے لیے رویا جائے، تو جو رونا ہے، جو گریہ ہے، جو کہ اصلہ زداری ہے، وہ امام حسین کی مظلومیت معرفت کے ساتھ ہے اور انسان کو عمل کی طرف لے جانے والا گریہ ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب گریہ اور زداری کی بات کی جاتی ہے اور وہ کہا جاتا ہے، تو اس سے مراد کیا وہی والا گریہ ہے کہ وہ والی کیفیت کا گریہ ہے؟ تو ہرگز نہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر جو گریہ ہے وہ اب معرفت کے ساتھ گریہ ہے. اب یہ جو گریہ ہے اس کی اہمیت کیوں اتنی کی گئی ہے؟ اس لیے کہ جب آپ کے اوپر حزن کا وہ عالم، اب دیکھیں میں پھر یہاں سے اس کو تفکیک کر کے کہوں گا، گریہ کا وہ عالم، حزن کا وہ عالم، ملال کا وہ عالم، کہ جو امام کی معرفت کے ساتھ اور آپ کے اندر کی خواہش، آپ کی جان کے عمق سے، آپ کی جان کی گہرائی سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ابھرنے والے جذبے کی صورت میں آنکھ سے ٹپکتا ہے، وہ آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری کرتا ہے. اب اس کے بعد کا مرحلہ دیکھیے، ہمارے پاس روایات میں کم از کم بندے کی نظر سے کہیں نہیں گزرا کہ آئمہ نے کہیں پر مثلا سینہ پیٹنے کو یا ماتم کی کسی اور شکل کو تاکید کیا ہو یا بیان کیا ہو یا اس کا حکم دیا ہو. جس چیز کا آئمہ نے سب سے زیادہ، آئمہ ہم سے فرماتے ہیں، یہ ہمارے پاس روایت میں ملا ہے کہ ایسے رو جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے لیے روتی ہے، وہ وہاں پر بھی جس چیز کو. اب ہو سکتا ہے کہ بعض مائیں اپنے بیٹے کے لیے سینہ پیٹیں، ہو سکتا ہے کہ بعض مائیں اپنے سر کے بال کھولیں، ہو سکتا ہے بعض مائیں اپنے رخسار زخمی کریں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کیفیات بھی ہمیں مل سکتی ہیں. لیکن آئمہ نے جس چیز کو ان تمام حالتوں میں کنسنٹریٹ کیا ہے وہ حالت گریہ ہے. حزن و ملال کی کیفیت، یہی حسن و ملال کی کیفیت ایک مرحلے میں داخل ہو کر انسان کو سینہ پیٹنے، سر پیٹنے یا مختلف اعمال پر اس کی طرف ترغیب دیتی ہے، اس کی تحریک دیتی ہے. پس ماتم گویا خود حسن و ملال کی کیفیت کا نام ہے.